कल हम चर्चा किया था आध्यात्मिक जगत का स्वरूप कैसा है, आध्यात्मिक जगत का भूगोल कैसा है। हाँ यस श्याम प्यारी, ब्रह्म ज्योति के आगे देवी धाम
नहीं।
हाँ देवी धाम ये भौतिक जगत है, देवी धाम वेरी गुड। वृंदावन का विशेषता क्या है
कि वहाँ पे सब योग माया के कारण भूल जाते कि कृष्ण कृष्ण
ओके
भगवान है।
भूलने का जरूरत क्या है,
प्रेम।
हाँ क्योंकि भगवान भक्तों के साथ तीन प्रकार के रस आस्वादन करना चाहते हैं, और तीन वो तीन रस कैसी हैं, वेरी गुड ओके। तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंध में बहुत सुंदर रूप से हुआ है। दशम स्कंध में, दशम स्कंध का आठवां अध्याय में वर्णन हुआ है माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बाधा जाना। ये कौन सी रस का प्रकाश होगा इसमें, वात्सल्य रस। एक बार अपने दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दधि मंथन करते समय वे कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोच कर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उसकी साड़ी का सिरा दृढ़तापूर्वक लिपटा था, और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण दही मथ रही थी, तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दूध चूने लगा, उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुनझुन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंद थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपने माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्रों को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध उफनाने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को एक और बिठाकर चूल्हे को पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होंठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होंठ बंद कर लिए और हाथ में एक ककड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कड़ाही से उफनाते दूध को ठीक करके पुनः मतने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। क्योंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गए कि ये कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़ी मसूल पर बैठा पाया। वे छत से ढंगे झूले पर लटके एक झीके से मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र का इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। अतः वे तुरंत मुसल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोने में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े जोगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्द में योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसे महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे, किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस तिस भांति वे नटबर बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआ से हो गए। वे अपनी आंखों हाथे से मलने लगे, जिनमें काली काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखों बेचैन हो गई थी। माता यशोदा ये समझ रही थी कि कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि ये बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो न जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि कृष्ण छोटा सा शिशु है। वे ये नहीं जान पाई कि ये बालक अनंत है, जिसका न तो अभ्यंतर है, न बाह्य, न आदि है और न अंत। वे असीम तथा सर्वव्यापी हैं। निस्संदेह वे ही ये संपूर्ण दृश्य जगत हैं। फिर भी यशोदा जी कृष्ण को अपना मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं, तो भी वे उन्हें काष्ठ के उलूक से बांधने का प्रयत्न कर रही थी, किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, जिसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वो 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मय थी कि ये सब क्या हो रहा है। वे श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास में थक कर चूर हो गई, उनके पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देखकर कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बांधाए जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता जसोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपने चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निस्संदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसके रक्षा करे या उसे मिटा दे। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार के मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, जोगियों तथा मुनियों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपे न गिया नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। नहीं वे जोगियों तथा चिंतकों द्वारा मुनियों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उलूक में बंधे हुए कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों के एक जोड़ी देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंद कन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था। अब उन्होंने मुझे काष्ठ के उलूक से बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्ष की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और उनके नाम नल कुबेर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने शाप दिया था, क्योंकि वे मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि ने शाप के साथ ये बर भी दिया था कि कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। ये कथा अगले अध्याय में दी गई है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अच्छा, ये 8 नहीं 9वें अध्याय था। अब ये कौन से महीना है? ये अश्विन आगे सावन है, और अश्विन उसके बाद कार्तिक महीना है। अश्विन भादर और भादर के बाद कार्तिक। हाँ, श्रावण भाद्र, राइट, श्रावण भाद्र अश्विन और कार्तिक। सावन और भादर है वर्षा ऋतु मानसून, और उसके बाद शरद, तो आश्विन, और ये कार्तिक महीना में ये लीला हुआ था। इसलिए हम दामोदर, कार्तिक महीना का संस्कृत नाम होता है दामोदर महीना। इस महीना में भगवान दामोदर लीला विलास किए थे, इसका ही वर्णन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने माता के साथ ये बाल लीला प्रकट कर रहे थे। भगवान एक नन्हे से बच्चे के तरह लीला विलास कर रहे थे, जैसे साधारण बालक लीला करते हैं, आचरण करते हैं, भगवान भी वैसे ही आचरण करने लगे। माँ दधि मंथन कर रही थी, आके बोला माँ हमको दूध पीना है, और दूध पीने लगा। और माँ यशोदा भी माँ यशोदा का मन में भी बहुत आनंद हो रहा, तो उनका आनंद में उनका सारा चेतना डूब गई थी। और उसी समय जब कृष्ण ने दूध पी रहा था, आग के ऊपर दूध गर्म हो रहा था, तो दूध उबलने का संभावना हो गया, तो माँ यशोदा ने गया वो दूध संभालने के लिए। ये दूध का पीछे भी थोड़ा सा इतिहास है। ये दूध माँ यशोदा के पास कोई गोपियाँ आकर शिकायत की थी कि कृष्ण हमारे घर में जाकर मक्खन चुराते हैं और ऐसे नटखट पन करता है। तो माँ यशोदा सोचने लगा, कृष्णा हमारे घर में तो मक्खन का कोई कमी नहीं है, तो कृष्ण दूसरे के घर में क्यों जाते हैं चुराने के लिए। तो माँ यशोदा सोचा शायद मेरा घर में जो मक्खन बनता है वो उतना अच्छा नहीं है, दूसरे के घर में जो मक्खन है कृष्ण के लिए वो और भी स्वादिष्ट लगता है। तो इसलिए माँ यशोदा सोचा कि सबसे बढ़िया जो गाय से सबसे बढ़िया गाय को सबसे बढ़िया घास खिलाकर उस दूध से मैं मक्खन बनाऊंगा, तब वो दूध तब शायद कृष्ण और किसी के घर में मक्खन चुराने के लिए नहीं जाए। तो वही दूध माँ यशोदा ने गर्म कर रही थी आग के ऊपर, और श्री कृष्ण माँ का दूध पी रहे थे। और जब माँ यशोदा अचानक कृष्ण को छोड़कर उतार कर ऐसे जमीन पर रख के दूध संभालने के लिए दौड़े, तो कृष्ण का मन में बहुत गुस्सा आया। कृष्ण सोचने लगा ये दूध किसके लिए है, मेरे लिए ही तो है, तो ये दूध संभालने का इतना क्या जरूरत है, मैं तो दूध पी रहा था, आप ही का दूध पी रहा था, तो ठीक है मैं भी आपको दिखाऊंगा कुछ। तो ये सोचकर कृष्ण ने वो मक्खन का मटका तोड़ दिया, दही का मटका तोड़ दिया, और जो उखल के ऊपर चढ़कर मक्खन चुराने लगा, खुद खाया और खाने के पश्चात बंदरों को भी खिलाया, और अपने दोस्तों को खिलाया, और दोस्तों के खिलाने के पश्चात बंदर को भी खिलाया। और जब ऐसे बंदर को खिला रहा था तब माँ यशोदा वहाँ आ पहुंची। माँ यशोदा देखा जब आया घर में दूध संभाल कर, तो माँ यशोदा ने देखा कि ये मटका तोड़ा हुआ, टूटा हुआ मटका ये हुआ है, जमीन में दही बह रही है और सारा सारे जगह एकदम रण क्षेत्र बन गया है। तो ये देखकर माँ यशोदा ने सोचा ये तो ये मेरा नन्हा कन्हैया का कार्य है। तो पहले माँ यशोदा ने सोचा कि उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। तो इसलिए माँ यशोदा वो मंथन दंड जो है, जिस दंड के द्वारा दधि मतते हैं, उस छड़ी लेकर ढूंढने लगा कहाँ कृष्ण है, कहाँ गया है। और वहाँ जाके देखा कि कृष्ण ये ले रहे हैं, दही चुरा कर, मक्खन चुरा कर बंदरों को खिला रहा है। तो माँ यशोदा को आते देखकर ही कृष्ण ने वहाँ से उखल से उतार कर भागने दौड़ने लगा और माँ यशोदा भी कृष्ण को पीछा किया। और यहाँ वर्णन हुआ है माँ यशोदा का शरीर थोड़ा भारी था और कृष्ण एकदम बच्चा है और बहुत तेज दौड़ रहा है, माँ यशोदा थक गया। तो माँ यशोदा ने अंत में श्री कृष्ण को पकड़ लिया। तो जब कृष्ण को पकड़ लिया तो डर के मारे कृष्ण भी रोने लगा। इसका वर्णन दामोदराष्टकम में हुआ है, रुदंतंग मुहुर नेत्रम जुग्मंग मृजंतम कराम्भोज जुग्मेन शातंक सातंक नेत्र। रुदंतंग मुहुर नेत्रम, आंखों से पानी निकलने रही, निकलने लगी, रोने लगा और अपना हाथ से आंसू पोंछने लगा आंखों से। कराम्भोज जुग्मेन, आंखों से दो हाथों से आंसू पोंछने लगे। और सातंक नेत्रम, सातंक मतलब डर गए आंखों से माँ यशोदा की ओर देखने लगे, मारेगा तो नहीं। तो ये है भगवान का इति दृक्ष लीला भी आनंद। ऐसे लीला करके भगवान अपने भक्तों को आनंद के सागर में निमज्जनतम डुबा देते हैं। कौन से सागर में? आनंद के सागर में डूब जाते हैं सब भक्त भगवान के इस लीला के कारण। ऐसे ये है भगवान का लीला। भगवान को क्यों ऐसे कार्य करना होता है? साधारण मनुष्य करते हैं, क्यों करते हैं? कर्म के फेर से करते हैं, जो कुछ करते हैं कर्म के कारण। प्रकृति क्रियमानानी गुणई कर्मानी सर्वश, कर्म के कारण बच्चे नटखटपन करते हैं, कर्म के कारण माँ आके डांटते हैं मारते हैं। बल्कि भगवान को तो ऐसा कोई कार्य का जरूरत नहीं है। भगवान तो कर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, गुण और कर्म के अधीन भगवान नहीं है। तो भगवान क्यों कर रहे हैं? आनंद आस्वादन करने के। भगवान आनंदमय है। आनंद का अनुभूति कैसे होता है? आनंद हम कैसे आस्वादन करते हैं? आनंद का अनुभूति हमें कैसे होता है? घर में एक बॉय बैठ के आनंद हो मिलेगा? बिस्तर पे लेटे हुए आनंद मिलेगा? सोते हुए आनंद मिलेगा? आनंद के लिए किसका जरूरत होता है? आनंद के लिए लेन देन का, भावना का लेन देन, संपर्क का लेन देन, प्यार का लेन देन। ये प्यार का जो लेन देन है उसी के माध्यम ही आनंद का आस्वादन होता है। तो भगवान आनंदमय है। तो भगवान आनंद कैसे आस्वादन करेंगे? कैसे? भगवान को भी आनंद आस्वादन करना होगा। अगर भगवान आनंदमय हैं तो भगवान जरूर आनंद आस्वादन कर रहे हैं या करते रहते हैं। तो ये आनंद का आस्वादन कैसे होता है? ऐसे प्यार के संपर्क के माध्यम। इसलिए ही ये जो तीन संपर्क दास सख्य वात्सल्य और मधुर रस का लेन देन का जरूरत होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान क्या आनंद आस्वादन करते हैं? ना तो भगवान का भक्त को भी आनंद मिलता था। तुम देखो मंदिर में भगवान को आरती हो रहा है, पूजा हो रहा है, हम दर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का महिमा कीर्तन कर रहा है, ये कौन सी रस में हो रहा है? ये हो रहा है शांत और दास्य। सबका दास्य नहीं, भाग्यवान पुजारियों के लिए दास्य है। हम लोग तो वहां खड़े होकर शांत रस आस्वादन कर रहे हैं। भक्त लोग भगवान को श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान को खाना पका रहे हैं, तो आनंद किसका अधिक होता है? जो भगवान की सेवा कर रहे हैं उसका, ना क्या जो खड़े होकर भगवान को दर्शन कर रहे हैं उसका। जो सेवा कर रहे हैं उसका आनंद अधिक है। भक्त लोग भगवान के लिए हार बनाते हैं फूल की, उसमें आनंद आता है, आनंद है। तो ऐसे जो सेवा है, इस सेवा के माध्यम आनंद का आस्वादन। भगवान को श्रृंगार हो रहा है, भगवान को नहा रहे हैं भक्त लोग, भगवान को, ऐसे जो सेवा है ये सेवा दास्य रस में हो रहा है। तो ये शांत रस और दास्य रस में अधिक आनंद किस में है? दास्य रस में। तो ये दास्य रस में ये जो है भगवान को सेवा कर रहे हैं प्रभु के रूप में, दास के रूप में भगवान को प्रभु मानकर जानकर सेवा हो रहा है। अच्छा, आप देखो, अगर आप भगवान अगर मंदिर से निकल आए और बोले चलो हम लोग थोड़ा ये बगीचा में खेलते हैं, तो उसका आनंद कैसा होगा? उससे भी अधिक होगा। जो भक्त लोग भगवान को खाना पका रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं और बाहर बैठ के भगवान को स्तुति वंदन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान अगर ऑल्टर से उतार कर बोला चलो हम लोग, चलो आज हम खेलेंगे, उससे आनंद और भी ज्यादा होगा। अच्छा, तो उससे भी बढ़कर और कैसे आनंद? खेलने के पश्चात माँ यशोदा आया, बोला कृष्णा घर वापस आओ, और कृष्ण भी चला। तो इसमें जो आनंद, ये उससे भी अधिक होगा। तो ऐसे भक्तों के साथ भगवान ये जो प्यार का जो आदान प्रदान करते हैं, इसके माध्यम ही आनंद का, सही आनंद का, दिव्य आनंद का आस्वादन होता है। इसका ही वर्णन यहां हो रहा है। तो देखो, ये सुनते ही कितना आनंद हो रहा है, और ये अगर हम देखते हैं तो और कितना आनंद होता है। अच्छा, तो ये थोड़ा आगे हम और कुछ पढ़ेंगे, चैप्टर 10, नल कुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार। अच्छा, ये कृष्ण का ठीक है, हम यहाँ बीच में से पढ़ना शुरू कर रहे हैं ताकि कृष्ण का लीला का ही कंटिन्यूटी होते रहे। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उलूख में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जमल अर्जुन वृक्षों की ओर बढ़ते गए। भगवान श्री कृष्णा को ज्ञान था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े जमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद को वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्ष के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्ष के बीच फंस गया। कृष्ण माँ यशोदा कृष्ण को कहाँ बंधे थे? उखल में बंधा था, कमर में रस्सी लगाकर। दामोदर, दाम मतलब रस्सी, और उदर, कृष्ण का उदर पेट से रस्सी बांध के उखल से उसको बांध दिया। तो सोचा कि ठीक है, तुम यहाँ बैठे रहो, बदमाशी करने का और अवसर नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा बदमाशी करने का सजा है। बल्कि कृष्ण क्या किया, वो उखल को खींचने लगा, तो खींचने के कारण उखल गिर पड़े, गिर गए, तो और कृष्ण उसको खींच के ऐसे चलने लगे। और ये हाथ और पाँव पैर से ऐसे क्या बोलते हैं, बंगला में हामागुड़ी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते, अच्छा घुटने के, घुटने घुटने लगे, अच्छा अच्छा गुट्टन, अच्छा गुट्टन। तो ऐसे कृष्ण गुट्टन करते हुए खींचने लगे। और तो वहां नंद महाराज का आंगन में ये दो वृक्ष था जमलार्जुन। कभी कभी दो वृक्ष एक साथ, बीज एक साथ पड़ने से दोनों एक साथ, यद्यपि दो अलग वृक्ष हैं बल्कि एक साथ वो बढ़ता है और बीच में अलग रहता है। तो कृष्ण ने वो दोनों वृक्ष के बीच से आगे बढ़ गए। तो कृष्ण तो आगे बढ़ गया, बच्चा है नन्हा सा, बल्कि वो उखल दोनों वृक्ष के बीच अटक फंस गया। और फंस गया तो कृष्ण ने उसको खींचने लगा, और खींचने के कारण वो वृक्ष जो है, दो जमलार्जुन जमल अर्जुन वृक्ष, वो गिर पड़ा। तो इसका ही वर्णन ऐसे यहां हो रहा है। अतः वे इन दोनों वृक्ष के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्ष के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उलूक से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। जो ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, तही दोनों वृक्ष धर तथा शाखाओं समेत धम से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्ष में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि ये दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट रहती हैं। ऐसे उन दोनों ने भगवान को स्तुति करने लगा। जब नल कुबेर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की, तो गोकुलाधीश बाल कृष्ण, जो जशोदा द्वारा उलूक से बधे गए थे, हंसे और बोले, ये मुझे पहले से ज्ञान था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्भ की गर्भित स्थिति से उबराने के लिए अहैतु की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात हैं। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया अपितु तुम दोनों को अनेक दर्शन भी किए उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्ध जीव संयोग वश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं तो वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकती। अतः हे नल कुबेर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कोई परिक्रमा की और पुनः पुनः प्रणाम करके वे वहाँ से चले गए और भगवान उसी प्रकार उखल से बधे वहीं पर रहे। अच्छा, और थोड़ा सा इसके पश्चात वर्णन है। जब वे जमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे, क्योंकि उन्हें उनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उखल से बंधे गए बाल कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो न हो ये किसी असुर की करतूत है, कोई किसी असुर का करतूत है, अन्यथा ये कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार रहे थे तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्ष के बीच में आए तो उखल उलटकर वृक्ष के बीच आ फंसा और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों की इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती हैं, किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्य से भिन्न है, हो सकता है कि इसी ने ये किया है। नंद महाराज अपने पुत्र के असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपने गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आई और ताली बजा बजा कर उसके अद्भुत कार्य की प्रशंसा करने लगी। कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीढ़ा लाने के लिए कहती यद्यपि ये पीड़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह इसे माता के पास उठा लाते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊं लाने के लिए कहते, तो कृष्णा उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते थे। जब उनसे कोई ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती जैसे जिसे वे उठा ना पाते, तो वे केवल अपने बाहों हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद के आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य के खोज करने वाले ऋषियों को ये दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाएं के वशीभूत हैं। हरे कृष्णा, जय श्री लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की
जय।
श्री श्री राधा मदन मोहन की
जय।
गौर प्रेमानंदे
जय।